अय्यूब अध्याय 27, अध्याय 27 पद 1 से लेकर 6 तक। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर की जीवन की शपथ खाता हूं जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। परमेश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। अय्यूब अपने मित्रों की बातों से थक चुका था। उसने उनसे कहा, मैं तुम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं, जब तक मुझमें सांस है मैं अपनी निष्ठा के पक्ष में ही कहता रहूंगा। मेरे होठों से छल की बात नहीं निकलेगी। मैं तुम लोगों का मन रखने के लिए अपने आप को पापी नहीं कहूंगा। परमेश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों की बातों को सही मानूं। मैं मरने तक अपनी निष्ठा का इनकार नहीं करूंगा। मैं अपनी धार्मिकता को थामे रहूंगा। मेरे जीवित रहने तक मेरा मन मुझे नहीं दिखारेगा। यहां तक तो हमने अय्यूब की प्रतिक्रिया उसके दोस्तों के प्रति देखी। अब अगले अध्ययन में हम उसकी प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति देखेंगे, जो सर्वथा भिन्न होगी। मुझे यहां बड़ी ही रोचक बात देखने को मिलती है। मेरे विचार में यदि हम अपने मित्रों को किसी बात के लिए कायल करते हैं तो वो हमारी भूल होती है। हम प्रायः किसी व्यक्ति में दोषी विवेक उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं, क्या आपको अपने किए का पछतावा नहीं है? ये बहुत ही बुरी बात है। इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? यहां मैं अपने आप को सही सिद्ध करना चाहता हूं। हे डोंगी, मैं नहीं चाहता कि तू मुझ पर दोष लगाए। तू कौन सा कम बुरा है? देखिए, मैं कैसे अपने आप को निर्दोष दिखा रहा हूं कि कोई मुझ पर उंगली न उठाए। मैं ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहां भी ये दोस्त अय्यूब के विवेक को दोषी ठहराना चाहते हैं कि उसने बड़े अधर्म के काम किए हैं। अय्यूब उनसे कहता है, मैं तुम्हें दोष नहीं देखूंगा। मैं तो अपनी निष्ठा पर ही अटल रहूंगा। मैं उसे बनाए रखूंगा। जब परमेश्वर ने कहना आरंभ किया तब कहानी कुछ और थी। इससे मुझे ये समझ में आया कि मनुष्यों को दोष का बोध कराने की अपेक्षा उचित ये है कि हम परमेश्वर से याचना करें कि वो उन पर स्वयं को प्रकट करे। परमेश्वर के प्रकटीकरण का जीवंत प्रभाव ये है कि मैं स्वयं को अपने आप पर प्रकट करूं। जब मैं स्वयं को परमेश्वर के प्रकाश में देखता हूं तब मैं स्वतः ही पुकार उठता हूं, हाय मुझ पर कि मैं पापी मनुष्य हूं। मैं तब अपनी अधार्मिकता को देख पाता हूं। जब परमेश्वर अय्यूब पर प्रकट हुआ तब अय्यूब क्षमा के लिए पुकार उठा। ये कहानी बिल्कुल भिन्न है। हमें इसे कुछ सीखना चाहिए। मनुष्यों को उनके कुकर्मों का बोध कराकर उनमें दोषी विवेक की स्थापना करके उनके मन में मैल उपजाने की अपेक्षा सबसे अच्छा काम तो ये होगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो उनके मन को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा भर दे। प्रभु, उन पर अपने आप को प्रकट कर कि वे तेरी धार्मिकता के प्रकाश में अपने आप को देखें। इस प्रकार उनके स्वभाव में एक नाटकीय परिवर्तन आएगा। मेरा प्रयास केवल उनके मन को मलिन करेंगे और वे कठोर होता जाएगा और वो अपना दोष कभी नहीं मानेंगे। आयुब के मित्र अपना तर्क प्रस्तुत करने में असफल रहे। अध्याय 27 पद 7 और 8। मेरा शत्रु दुष्टों के समान और जो मेरे विरुद्ध उठता है वो कुटिलों के तुल्य ठहरे। जब परमेश्वर भक्तहीन मनुष्य का प्राण ले ले तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। आयुब का ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दुष्टों ने सब कुछ पा लिया है तो भी उनकी क्या आशा रहेगी जब मृत्यु उन्हें आ घेरेगी। यीशु ने कहा था मती 16 अध्याय 26 पद, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यीशु आयुब के शब्दों को किसी और संदर्भ में दोहरा रहा था। यदि परमेश्वर किसी ढोंगी के प्राण ले ले तो उसके पास फिर क्या रह जाता है। अध्याय 27 पद 9 से लेकर 12 तक, जब वो संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा। क्या वो सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा। मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बात मैं ना छिपाऊंगा। देखो तुम लोग सबके सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो। तुम सब कुछ देख चुके हो, तुम सत्य को भी जानते हो, तो फिर तुम लोग व्यर्थ की बात पर क्यों अड़े हुए हो। अध्याय 27 पद 13 से लेकर 17 तक, दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से ये है और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वो ये है कि चाहे उसके लड़के वाले गिनती में बढ़ भी जाए तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे और उसकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी। उसके जो लोग बच जाए वे मरकर कब्र को पहुंचेंगे और उसके यहां की विधवाएं ना रोएंगी। चाहे वो रुपया धूली के समान बटोर रखें और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनित तैयार कराए, वो उन्हें तैयार कराए तो सही, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। वो उसका आनंद नहीं ले पाता है। आपकी जमा धन राशि को कौन खर्च करेगा। आपके मरते समय कौन आपके पास होगा। आप क्या अपना जमा किया धन अपने साथ ले जाओगे। आयुब एक दुष्ट और एक ढोंगी का स्थान देख रहा है जो उस पर दोष लगाते हैं, वो उनका पक्ष ले रहा है। तू कहता है कि दुष्ट और ढोंगी आनंद से रहते हैं। आयुब कहता है कि उसके कहने का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करे, परंतु वो कहता है मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों का अंत क्या होगा, अतः मैं उनकी सिफारिश नहीं कर रहा हूं। वे तो काट डाले जाएंगे, उनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वे नाश हो जाएंगे। वे धन को संजो कर रखेंगे परंतु कोई और उसका लाभ उठाएगा, परंतु निर्दोष चांदी का भागीदार होगा। अध्याय 27 पद 18 से लेकर 23 तक, उसने अपना घर कीड़ों का सा बनाया और खेत के रखवाले की झोपड़ी की नाई बनाया। वो धनी होकर लेट जाए परंतु वो गाड़ा न जाएगा, आंख खोलते ही वो जाता रहेगा। भय की धाराएं उसे बहा ले जाएगी, रात को भावंडर उसको उड़ा ले जाएंगे, पूर्वाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी और वो जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा। उसके हाथ से वो भाग जाना चाहेगा, लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर ना रह सकेगा।